So we're reading from Sri Chaitanya Charitamrita.
तो हम श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं.
मध्य लीला.
मध्य लीला.
It is chapter 7, text 72.
अध्याय सात, श्लोक संख्या 71.
We'll review a little bit so you have the context.
हम इसमें थोड़ा सा पहले इसका बताएंगे पहले क्या चल रहा है.
Sri Chaitanya Mahaprabhu was about to leave on his tour of South India.
Sri Chaitanya Mahaprabhu अपने दक्षिण भारत की यात्रा की ओर निकलने ही वाले हैं.
Sarvabhauma Bhattacharya, formerly impersonalist follower of Shankaracharya.
सारव भट्टाचार्य जो कि पहले मायावादी थे शंकराचार्य के पथ के अनुगमन करते थे.
Incarnation of Brihaspati.
बृहस्पति के अवतार.
Now converted to pure devotee by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
अब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शुद्ध भक्त बन गए हैं.
He asked Mahaprabhu to meet with Ramananda Roy at Rajmundry.
और वो महाप्रभु से अनुरोध कर रहे हैं कि श्री रामानंद राय से मिलें जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएं.
On the banks of the huge Godavari River.
Godavari nadi ke tat ke upar.
So, and we'll review text 68. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Sarvabhauma Bhattacharya's request that he meet Ramananda Roy and bidding Sarvabhauma farewell, the Lord embraced him.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया कि वे रामानंद राय से अवश्य मिलें. महाप्रभु ने सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया.
गरे कृष्ण बजे मोरे करिहा अश्विराधे निरचरे असेयना तमरा प्रसादे. श्री चैतन्य महाप्रभु asked the Bhattacharya to bless him while he engaged in devotional service of Lord Krishna at home, so that by Sarvabhauma's mercy, the Lord could return to Jagannath Puri.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ne Bhattacharya se kaha ki jab ve apne ghar mein Bhagwan Krishna ki bhakti mein lage ho, tab ve unhe aashirvaad dete rahe, jisse Sarvabhauma ki kripa se ve punah Jagannath Puri vapas aa saken.
So we see this is rasa. Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. He's playing the role of a Vaishnava.
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रस का आस्वादन हो रहा है. यद्यपि चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन वो एक वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं.
So he is the spiritual master of Sarvabhauma Bhattacharya.
और सार्वभौम भट्टाचार्य के वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं.
Sarvabhauma Bhattacharya has completely surrendered unto him.
और सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूर्ण रूप से उनको शरणागति कर दी है.
But we see that Mahaprabhu is asking Sarvabhauma Bhattacharya for blessings.
पर हम देखते हैं कि यहाँ पे महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांग रहे हैं.
So these are the subtleties of rasa.
ये निश्चित रूप से रस है.
As an ideal Vaishnava, Mahaprabhu is showing that he's not puffed up, he's not proud.
एक आदर्श वैष्णव होने के नाते महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि वो फूले हुए नहीं हैं.
He's taking the position that he's dependent on the mercy of the Vaishnavas.
और वो ये स्थिति स्वीकार कर रहे हैं कि वे भक्तों की वैष्णवों की कृपा पर निर्भर हैं.
He's taking the position that he's dependent on the love of his devotees. This is very significant.
और अपने भक्तों के प्रेम के ऊपर निर्भर हैं.
The Supreme Lord pretends to be dependent on his devotees in order to increase the thickness of the rasa.
परम भगवान अपने भक्तों के ऊपर निर्भरता का दिखावा करते हैं ताकि रस का गाढ़ापन बढ़े.
Just like Brahman explains, he's in a joking mood. He's talking about deities.
एक हास्यप्रद अवस्था में प्रभुपाद विग्रहों के बारे में कुछ बता रहे थे.
Sometimes Prabhupada would paraphrase deity talking or Krishna's way of thinking.
कभी कभी प्रभुपाद भगवान के सोच विचार को बताया करते थे.
Deity may say, I'm a statue, I can't do anything.
तो प्रभुपाद कहते हैं कि विग्रह कह सकते हैं कि मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता.
So you have to clothe me and feed me, you have to do something. I'm a statue, you know. What can statue do?
तो भगवान कह रहे हैं कि आपको मुझे कपड़े पहनाने होंगे, मुझे खाना खिलाना होगा, क्योंकि मैं तो एक मूर्ति हूँ.
This is joking mode, but this is reverse rasa.
ये एक joking हास्यप्रद मूड है प्रभुपाद जी का, लेकिन ये एक रस भी है.
Under internal potency, under Lila Shakti, the deity pretends to be dependent on his devotee. He's not dependent on anything. Not dependent on anyone.
जहाँ पर जो विग्रह है वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में, लीला शक्ति के प्रभाव में ये बताती हैं कि वो अपने भक्तों के ऊपर निर्भर हैं.
But to increase the thickness and sweetness of the rasa. He acts or pretends as if he's dependent on the devotee.
यद्यपि विग्रह किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, लेकिन रस का गाढ़ापन और मधुरता बढ़ाने के लिए वो ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे भक्तों के ऊपर निर्भर हैं.
Just like if you're making kheer, you take the milk, you boil it down, you add sugar, make it sweeter, sweeter, it becomes thicker.
जैसे कि कभी आप खीर बना रहे हो तो आप उसको उबालते रहे, चीनी डालते रहे, तो और गाढ़ा गाढ़ा बनती जाती है.
As the nature of rasa.
ये ही रस का स्वभाव है.
So although Chaitanya Mahaprabhu is a strict sannyasi.
यद्यपि महाप्रभु एक बहुत ही कड़े सन्यासी थे.
On the other hand, he's showing this humble mood of deep love.
दूसरी ओर वो अपने विनम्र स्वभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें गहरा प्रेम है.
As the most perfect acharya, he is demonstrating proper Vaishnav interaction. See, we were supposed to learn from this. We're not supposed to be dull brain. We're supposed to get the point. It's not that I think, oh, now, oh, you are very senior now, very senior man, so many years of devotee now. Oh, he's low class, he's a yellow boy, so I'll just, you know, I don't have to pay attention to him. I will, you know, just to my peer group, I will offer obeisances, but the yellow boy, he is different caste. This is all rubbish, bodily concept. Then anybody who thinks like it, if you think like that, you will remain neophyte.
तो महाराज बता रहे हैं कि क्योंकि महाप्रभु एक आइडियल आचार्य हैं, आदर्श आचार्य हैं, इसलिए वो ऐसे बहुत ही वैष्णव आदान प्रदान कर रहे हैं, और ये इससे हमें सीखना चाहिए. हमें मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़े भक्त हैं तो इनकी मैं आदर करूंगा, और ये पीले वस्त्रों में हैं भक्त, ये नए भक्त हैं तो इनका मैं आदर नहीं करूंगा. अगर ऐसा सोचेंगे तो हम हमेशा कनिष्ठ ही रहेंगे. मध्यम अधिकारी कृपा प्रदर्शित करता है, दया प्रदर्शित करता है, जो कि उन लोगों पे जो कि बाह्य दृष्टि से उसे नीचे के स्तर पे हैं.
He offers all respects to his peer group.
और अपने साथ के भक्तों को बहुत सम्मान करता है.
And he worships those that are his superiors.
और जो उनसे आगे बड़े चढ़े भक्त हैं उनकी पूजा करता है.
This is Vaishnav etiquette.
ये वैष्णव सदाचार है.
To be very frank, this movement has a lot to learn about Vaishnava etiquette. I've seen from my travels that even, you know, very senior devotees sometimes are very, very much without understanding proper Vaishnava etiquette.
और अगर मैं खुलासे से कहूँ तो हमारे आंदोलन में वैष्णव सदाचार सीखने की भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. और महाराज बता रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ बहुत ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो देखते हैं कि बहुत वरिष्ठ भक्त भी कभी कभी वैष्णव सदाचार को इतने अच्छे से नहीं समझते. श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत वैष्णव सदाचार के शिक्षाओं से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं.
How should a Vaishnava behave? We can't get that out of the scripture. That's why sometimes I not just once or twice, but I frequently hear from devotees that they read a Prabhupada's books and they're reading mechanically and they confess I'm not getting anything out of it. They're missing the purport. They're missing the deep meaning.
और भक्त अपने शास्त्र अध्ययन में इन वैष्णव सदाचारों की शिक्षाओं को नहीं निकाल पाते और तो महाराज से आके बताते हैं कि हमें अपने अध्ययन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सिर्फ बाह्य दृष्टि से एक ऊपर ऊपर से ही अध्ययन करते हैं।
That's why Prabhupada introduced the process of ishtagosi.
और इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने इष्ट गोष्ठी की प्रक्रिया शुरू की थी।
Ishtagosi doesn't just mean a sociological meeting to talk about, you know, service issues and management. That's not the only meaning of ishtagosi.
इष्ट गोष्ठी का केवल यही मतलब नहीं है कि हम अपने प्रबंधन और सेवा से संबंधित चर्चाएं ही करें।
A deeper meaning of ishtagosi is to hear and chant and discuss the science of devotional service and the process of to Krishna's pastime, up to Krishna's pastimes, what how to serve, how to behave amongst devotees. This is ishtagosi.
और इसका वास्तविक अर्थ है कि भगवान की जो सेवा है और वैष्णव सदाचार जो है उसका कैसे हमें आपस में पालन करना चाहिए और भगवान का श्रवण कीर्तन और लीलाओं का भी आपस में आदान प्रदान करना चाहिए।
So don't be an impersonalist.
तो इसीलिए हमें एक निराकारवादी नहीं होना चाहिए।
Beware of the impersonal tendency, which is just a type of caste Brahmanism.
हमें निराकारवाद की बारे में जानकारी होनी चाहिए जो केवल एक तरह का
hidden because you're wearing neck beads and Vaishnav dress, sika, maybe saffron, but impersonalism is hidden because otherwise you treat.
और ये जो हमारे अंदर का निराकारवाद है ये हमारे वैष्णव वेशभूषा में शिखा में तिलक में धोती कुर्ते में छुप जाता है।
All devotees with respect and love, you see. Regardless of their external station.
सही भक्तों से आपको प्रेम करना चाहिए उनकी बाह्य स्थिति को नकारते हुए।
If you think somebody is of a lower caste,
अगर हम किसी को नीची जाति का समझेंगे,
because they're not initiated, for example,
क्योंकि उनकी दीक्षा नहीं हुई है उदाहरण के तौर पे,
or maybe because they live outside of the temple,
और हो सकता है या मंदिर के भक्त नहीं है,
therefore you shun them, you're ice cold, you don't even say Hari Bol.
और आप इसीलिए उनको नकार देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते और उनसे बहुत ही
you don't show love or affection.
और उनसे कोई प्रेम नहीं दिखाते.
Just ice cold impersonalism, don't even say Hari Bol.
उनको Hari Bol भी नहीं कहते, एक तरह से impersonalism.
So we see that sometimes devotees have practiced Krishna consciousness for many years, but they actually developed this bad habit of impersonalism. They'll remain neophyte. They may doesn't. You don't count advancement in Krishna consciousness by how many years you stick your hand on a beatbox. That is not how you count advancement in Krishna consciousness.
महाराज बता रहे हैं कि यदि भी हम भक्तों को देखते हैं कि वो सालों सालों से कृष्ण भावना अमृत का प्रोसेस प्रक्रिया में जुड़े हैं, इसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये दूसरों के ऊपर ध्यान ना देना, निराकारवाद, एक कोल्ड स्वभाव, प्रेम ना आदान प्रदान ना करना आ जाता है। और तो वो कह महाराज बता रहे हैं कि हमेशा कनिष्ठ ही रहेंगे, चाहे वो कितने भी वर्षों तक अभ्यास करते रहेंगे इसका कृष्ण भावना अमृत।
Fortunately, His Holiness Gopal Krishna Goswami is very, very strict about second initiation, and I offer my dandavat pranams to that because that seriousness has to be there. You see, you have to be serious about practicing Krishna consciousness. It's not a cheap thing.
तो महाराज बता रहे हैं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही गंभीर और बहुत ही सख्त हैं सेकेंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा देने के मामले में, जो और महाराज कह रहे हैं कि इसके प्रति मैं अपने दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये शक्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करना गंभीरता से लेना चाहिए।
So Mahaprabhu asked Sarvabhauma Bhattacharya, his devotee, to bless him. See, this is sweet rasa.
तो यहाँ देखते हैं कि महाप्रभु अपने ही भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मीठा रस है, इससे हमें सीखना चाहिए।
It is also significant that he asks Sarvabhauma Bhattacharya, please do your devotional service nicely at home, and therefore by your mercy, by your sadhana, by your practices of devotional service at home, then by your mercy I'll be able to return to Jagannath Puri. So,
ये भी महत्वपूर्ण है कि महाप्रभु यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य को कह रहे हैं कि आप अपने घर पे बहुत अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन करना, ताकि आपकी इस भक्ति से मेरे को वापस जगन्नाथपुरी आने के लिए कृपा प्राप्त होगी।
So the Prabhupada makes this clear in the purport. He says, being a sannyasi, this is verse number 69, purport. Being a sannyasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu was in the fourth order of life, and thus was due all respect and adoration, whereas Sarvabhauma Bhattacharya as a householder was in the second order.
सन्यासी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु चौथे आश्रम में थे और इसलिए अत्यंत सम्मानित तथा पूज्य पद पर थे, जबकि गृहस्थ होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य द्वितीय पद पर थे।
A sannyasi is supposed to offer blessings to grihastha, yet now by his practical behavior, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested the blessings of a grihastha.
अतः उम्मीद तो यह की जाती है कि सन्यासी गृहस्थ को आशीर्वाद दे, किंतु महाप्रभु ने अपने व्यावहारिक आचरण के द्वारा एक गृहस्थ से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की।
This incident shows the special significance of Sri Chaitanya Mahaprabhu's preaching.
इस घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की विशिष्टता दिखाई देती है।
He gave equal status to everyone regardless of material considerations.
उन्होंने भौतिक धारणाओं की परवाह ना करते हुए हर व्यक्ति को समान पद प्रदान किया।
So, Mahaprabhu became famous. I've told you before that even the non-devotee historians give him credit for disrupting the Svarta Brahmin caste system and caste consciousness and this kind of discrimination. That even the non-devotee historians call it the Chaitanya era.
यहाँ तक कि महाप्रभु जो अभक्त इतिहासकार हैं, उनके बीच में भी बहुत प्रसिद्ध हैं इस रूप से कि उन्होंने ये जो जातिवाद और स्मार्ट ब्राह्मणवाद था, इसका खंडन किया, और इसलिए इस महाप्रभु के दौर जब महाप्रभु उपस्थित थे तो चैतन्य एरा बोला जाता है।
He demonstrated this by accepting Haridas Thakur, a Muslim, as Dhammacharya.
उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित ऐसे किया कि उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य की उपाधि दी।
He also had a good friend, Kolakshikar Sridhar, who is making leaf cups.
उनके एक बहुत अच्छे मित्र कोला विजय श्रीधर थे, जो कि केले के पत्ते से डोने बनाया करते थे।
So this devotee was not a big businessman. He was not wealthy. He was not prestigious. He was a very simple person and very poor.
कोला विजय श्रीधर बहुत बड़े प्रभावशाली उद्योगी नहीं थे, और वो बहुत ही विनम्र और बाह्य दृष्टि से गरीब थे।
महाप्रभु had a joking ras with him.
और महाप्रभु उनसे हास्य रस आदान प्रदान करते थे।
He was still, nowadays leaf cups are not very expensive, so you can imagine in those days that leaf cups were very cheap.
तो हम यहाँ तक कि आज भी जो डोने होते हैं वो इतने महंगे नहीं होते, तो हम सोच सकते हैं कि उन दिनों तो वो और भी सस्ते होते होंगे।
Still, Mahaprabhu used to bargain with them to try to make them drop the price.
और फिर भी महाप्रभु उनसे मोल भाव करके उनसे कम दाम करने के लिए बोलते थे।
But at the same time, He is dosing him with great love and affection and his mercy. So that was just a pastime in which he is demonstrating his loving mercy.
साथ ही साथ वो उनसे बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान और ये हास्य लीला करते थे तो इससे वो बहुत बड़ी कृपा देते थे वो लवजय श्रीधर को.
So this is the background of just before Mahaprabhu leaves for South India.
तो ये महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा के जाने से पहले का संक्षेप में हमने आपको बताया है.
ये तो बड़े महाप्रभु करिला कमाल मोचिता हनत हन परिला सर्वभौमा. This is text summary saying this. Sri Chaitanya Mahaprabhu departed on his tour and Sarvabhauma Bhattacharya immediately fainted and fell to the ground.
यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े.
Because even though a short while ago Sarvabhauma Bhattacharya was an impersonalist, but Mahaprabhu had completely transformed his heart and now he was a loving devotee of Mahaprabhu, in other words, a loving devotee of the Supreme Personality of Godhead.
और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ समय पहले तक एक मायावादी थे लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो अब एक प्रेमी भक्त बन गए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के तो इसलिए ऐसा हुआ.
Having previously been impersonalist, now by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu he is very very attached to the lotus feet of the Lord.
और यद्यपि मायावादी थे लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो अब चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से बहुत ज्यादा आसक्त थे.
Therefore, when Mahaprabhu departed for South India, Sarvabhauma Bhattacharya, he fainted out of separation.
और इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा की ओर निकले तो सार्वभौम भट्टाचार्य विरह की वजह से मूर्छित हो गए.
Although Sarvabhauma Bhattacharya fainted, Sri Chaitanya Mahaprabhu did not take notice of him. Rather, he left quickly. Who can understand the mind and intention of Sri Chaitanya Mahaprabhu?
यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया प्रत्युत वे तुरंत वहां से चले गए. भला श्री चैतन्य महाप्रभु के मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है.
So in the purport Srila Prabhupada comes, it was naturally expected that when Sarvabhauma Bhattacharya fainted and fell to the ground, Sri Chaitanya Mahaprabhu would have taken care of him and waited for him to regain consciousness, but he did not do so. Rather, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately started on his tour. It is therefore very difficult to understand the activities of a transcendental person. Sometimes it may seem rather odd, but a transcendental personality remains in his position unaffected by material considerations.
तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं स्वाभाविक तौर पर यह आशा की जाती थी कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े तब श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी देखभाल करनी चाहिए थी और उनकी चेतना आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े. अतः दिव्य पुरुष के कार्यों को समझ पाना अत्यंत कठिन है. कभी कभी ऐसे पुरुष भले ही असामान्य लगे किंतु दिव्य व्यक्ति भौतिक धारणाओं से अछूते रहकर अपने पद पर बने रहते हैं.
So today's verse, Mahanubhavara Chichara Swabhava Ehai Uspasama Kumara Katina Vrajramaya. Okay, now you can chant. Tanane Ubekshiya Kaila Shigra Kaman. Ebujite Pare Mahaprabhura Chitaman. So we've already read the verse in Group 4 of 71, but because it helps in understanding 71, I also want to read 72.
तो हमने 71 नंबर श्लोक का तात्पर्य और अनुवाद पहले ही पढ़ दिया है, तो इसको समझने में 72 नंबर श्लोक पढ़ने से हमारी सहायता होगी।
महुनु बावेरा चिचरा स्तपवा एहोए पुष्पा समा कुमला कतिरा व्रश रमाए। This is the nature of the mind of an uncommon personality. Sometimes it is soft like a flower, but sometimes it is hard as a thunderbolt.
अनुवाद: एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है, कभी वह फूल के समान कोमल हो जाता है तो कभी वज्र के समान कठोर।
Now please listen very, very carefully.
तो यहाँ पे कृपया बहुत बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक आप सुने।
To Prabhupada's purport.
प्रभुपाद जी का तात्पर्य।
Indirectly, he is describing not only great Vaishnavas in general, but indirectly he is describing him himself.
यहाँ पर प्रभुपाद परोक्ष रूप से ना केवल महान आचार्यों के बारे में बता रहे हैं, बल्कि स्वयं के बारे में भी बता रहे हैं।
The softness of a flower and the hardness of a thunderbolt are reconciled in the behavior of a great personality. This is very important.
तात्पर्य है प्रभुपाद बता रहे हैं, महापुरुष के व्यवहार में फूल की कोमलता तथा वज्र की कठोरता का सम्मिलन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
Prabhupada explains the following verses, a quotation from Uttara Ram Charita.
उत्तर रामचरित का निम्न लिखित उदाहरण इस व्यवहार की व्याख्या करता है।
Explaining the behavior of such great souls or acharya, the thunderbolt in one hand and the rose and lotus in the other hand. This is acharya must be like that because those who are dependent on instruction, you can't just be afraid of your disciples. That doesn't work. And that person is actually not qualified to be guru. Who is afraid of his disciples and just wants to be popular with his disciples, doesn't want to offend any of his disciples, bring any harsh words, etc. That person is not fit to be guru.
तो आचार्य के एक हाथ में वज्र के समान होता है और दूसरे हाथ में कमल के फूल होता है, और यही आचार्य के लिए बहुत जरूरी है ऐसा होना। अगर आचार्य अपने ही शिष्यों से भयभीत है कि वो कोई अपराध ना कर दे उनके प्रति, या ऐसा इस प्रकार से भयभीत है, तो उसे आचार्य गुरु बनने की योग्यता नहीं है।
So the quotation from the Uttara Rama Charita is as follows.
उत्तर रामचरित से जो उदाहरण है वो बता रहे हैं।
वज्र आते कतारानि मृदुनि कुश उमादपि लोकतारानं चैतांशि कोनो विज्ञातम् ईश्वरः। The hearts of those who are above common behavior are sometimes harder than a thunderbolt and sometimes softer than a flower. How can one accommodate such contradictions and a great personalities?
अनुवाद: सामान्य व्यक्ति से ऊंचे व्यवहार वालों के हृदय कभी वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं तो कभी फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। महापुरुषों में ऐसे विरोधाभासों को समझने में कौन समर्थ हो सकता है?
The Prabhupada demonstrated this, but at the same time, generally, as far as being hard as a thunderbolt, generally he showed that behavior towards his, you could say, topmost disciples, because they were already becoming proud as so-called senior men, sannyasis. They were all thought they knew something. They were all beginning to get puffed up. And so Prabhupada would periodically smash them with a thunderbolt.
तो प्रभुपाद ने भी इस व्यवहार को प्रदर्शित किया, लेकिन सामान्यतया अपने वज्र जैसे व्यवहार को प्रभुपाद जी ने अपने वरिष्ठ सन्यासी और वरिष्ठ शिष्यों के ऊपर प्रदर्शित किया, क्योंकि वे वरिष्ठ होने के कारण थोड़े अहंकार से फूलते फूल रहे थे, तो प्रभुपाद उनको समय समय पर उनके अहंकार को छिन्न भिन्न कर देते थे.
And yesterday I read the quotation from a letter that Srila Prabhupada sent to Kira Swami.
जैसे कि कल मैंने प्रभुपाद जी के एक वाक्य को पढ़ा था, जिस जो कि प्रभुपाद जी के एक पत्र में था जो उन्होंने गिरिराज स्वामी महाराज जी को लिखा था.
And which explains to Kira Swami that the spiritual master must give very strict instruction and must be very hard sometimes for the sake of instructing the disciple out of love.
जिसमें
that this is guru. Otherwise, if the guru is just sentimental, then the disciple will begin to try to take control. Listen carefully. This because this is going on. The disciple will try to take control of the guru with sentimentalism. They will try to manufacture their conception of what is a guru.
तो महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने उस वाक्य में यह लिखा था कि गुरु की एक कर्तव्य है कि वो शिष्य में कमी निकाले और उसके ही भले के लिए कठोर आदेश दे. तो अगर गुरु, महाराज बता रहे हैं कि अगर गुरु ऐसे नहीं करेंगे और भावुक हो जाएंगे तो फिर शिष्य गुरु के ऊपर नियंत्रण करने लगेगा और अपने ही धारणाएं बनाने लगेगा कि गुरु गुरु क्या होते हैं, और इस प्रकार से नुकसान
होगा. By loving service, not by flowery words, you see.
कभी कभी शिष्य गुरु को पसंद करने के लिए बहुत ज्यादा मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु को पसंद करने के लिए उन्हें उनकी प्रेममयी सेवा करनी चाहिए.
Just like Srila Prabhupada said, you will show your love for me by how well you cooperate together. So that goes to that makes the distinction between sentimentalism, oh Gurudev, Gurudev. But then you don't behave properly towards Vaishnavas. Then it's all show. It's show. Very shallow. Don't be like that. Learn. Try to understand. Because you have your head on a bead bag, because you have neck beads, it does not automatically make you a Vaishnava.
तो महाराज बता रहे हैं कि जो शिष्य हैं वो गुरु को सामने सामने से बोलते हैं, हे गुरुदेव, ये भावुकता दिखाते हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने बोला था कि आपका प्रेम मेरे प्रति तब प्रदर्शित होगा जब मेरे जाने के बाद आप आपस में मिलजुल कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाओगे. तो अगर हम वैष्णवों के साथ ठीक से आदान प्रदान नहीं करते और बस भावुक होकर गुरु को हे गुरुदेव ऐसे ही करते हैं, तो फिर ये केवल दिखावा मात्र है और गले में हमारे जप माला और गले में कंठी माला होने से हम वैष्णव नहीं बन जाते.
So just like you yellow boys are now forced to be a little humble because externally you are seen as being in a lesser position than saffron devotee, semi-senior man now, trainer, so many things.
तो जैसे कि महाराज यहाँ पे व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं कि अब हमारे जो पीले वस्त्रों में भक्त हैं उनको बाहर से देखने में उनको विनम्र स्थिति में देखा जाता है कि वो भी नए भक्त हैं, इनकी तुलना में जो कि गहरे वस्त्रों में भक्त हैं जो कि ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहे हैं.
So now you're forced to be humble by being yellow boys, you know.
अब आपको जबरदस्ती विनम्र बनाया जा रहा है इन पीले कपड़ों के द्वारा.
And then you get a little relief, you graduate to being a white boy.
और फिर जब आप सफेद वस्त्र में आएंगे तो आप कुछ राहत की अनुभूति करेंगे.
Like Shamakant Prabhu, he has graduated to become a white boy.
जैसे कि हमारे
श्यामपुर,
जैसे कि हमारे श्यामपुर गुरु जी अभी व्हाइट में हैं, पहले येलो में थे.
And then after some time, many will graduate or become qualified to put on saffron also.
और फिर कुछ समय बाद वो गहरे वस्त्र भी धारण करें.
But does saffron automatically make you a Vaishnava Prabhu? Does it?
तो क्या केवल गहरे वस्त्र ही आपको एक वैष्णव बना देते हैं, क्या ये सत्य है?
No. You have to undergo a change of heart. There was in the 70s, one of my godbrothers put in an album. In those days, You guys are all so young, you have no idea. This was an old-fashioned spinning record about this big around, you know. And the name of the album was A Change of Heart, you know.
तो महाराज बता रहे हैं कि केवल गहरे वस्त्र पहनने से ही कोई वैष्णव नहीं बनता, वास्तव में उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। तो महाराज बता रहे हैं कि उनके एक गुरु भाई थे, 1970 में उन्होंने एक एल्बम बनाया था जिसका नाम था हृदय का परिवर्तन।
So we have to undergo a change of heart if we actually want to become a Vaishnav.
तो हमें हृदय का परिवर्तन लाना होगा अगर हम वास्तव में एक वैष्णव बनना चाहते हैं।
It can't just be rhetoric. Try to understand rhetoric. You know the word rhetoric? No. It can't just be high words, high fancy poetic words. It can't just be superficial and then external, or you'll never advance in Krishna consciousness. If it's only theoretical, you'll never advance. If it just remains poetry, you'll never advance.
तो महाराज बता रहे हैं कि अगर हम जो कृष्ण भावना अमृत है उसमें हृदय का परिवर्तन अनिवार्य है, केवल बाह्य दृष्टि से कोई हृदय का परिवर्तन या कृष्ण भावना अमृत में प्रगति नहीं करता।
Just like many times I've stressed the difference between ज्ञान and विज्ञान।
जैसे कि बहुत बार महाराज ने विज्ञान और ज्ञान के बीच में अंतर बताया है।
Do you know the difference?
क्या आप yes. इसके बारे में?
Good. What is the difference? Very good.
प्रभुजी ने उत्तर दिया कि ज्ञान का मतलब है शुष्क ज्ञान, और जो विज्ञान है उसका मतलब है उसके व्यावहारिक जीवन में उतारना।
See, yellow boy is learning something. How about the rest of you?
तो हम देखते हैं हमारे पीले वस्त्र में जो भक्त हैं वो भी बहुत पंडित हैं।
It's not that after you've been chanting Hare Krishna for 5 years and some of them finally you finally after doing a little tapasya, finally one day you're awarded saffron, you know. It is not external. Krishna consciousness is not external.
महाराज बता रहे हैं कृष्ण भावना अमृत बाह्य नहीं है।
You have to undergo a change of heart.
आपको हृदय का परिवर्तन प्राप्त करना ही होगा।
Otherwise, why did Mahaprabhu say, "Das anu das anu das"?
नहीं तो महाप्रभु दास अनु दास अनु दास ऐसा कहते ही क्यों हैं?
There, this is, means humility. Has to be. There has to actually be humility. That somebody is just. And I hear reports that are very disturbing to me, actually, as a somewhat senior devotee, to hear these reports. To me, it's very disturbing to hear about improper behavior of devotees in different places throughout ISKCON, and who are sometimes very responsible men, but who have got a problem in attitude even after many years of training. I hear reports like this, and it's very disturbing. You see.
तो महाराज बता रहे हैं कि दास अनुदास अनुदास का अर्थ होता है विनम्रता। तो विनम्रता यही देखते हैं, और महाराज बता रहे हैं कि अभी भी महाराज को ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिससे महाराज बहुत विचलित और परेशान होते हैं, जिसमें महाराज हमारे दुनिया भर में इस कौन के मंदिरों के जो हमारे प्रमुख भक्त हैं, यद्यपि उनको सालों हो गए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए, फिर भी उनके जो व्यवहार है उसमें कुछ कमियां होने के कारण बहुत दुख होता है।
So I hope that next year in Mayapur I'll see my close friend Bhakti Vrinda Bhagavatam Swami.
तुम्हारे जा रहे हैं कि अगले साल मायापुर के जो मीटिंग होगा उसमें उनके जो एक मित्र हैं।
He is conducting the Vaishnav etiquette seminars.
वो वैष्णव सदाचार के ऊपर सेमिनार कर रहे हैं।
And I have got some strong. He's a close friend of mine. I'm going to tell him very strongly, you know, about what my experience is.
और वो महाराज के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, तो महाराज उनको बहुत ही जोर से, बहुत ही शक्ति से अपने व्यूज बताएंगे।
Then on behalf of Srila Prabhupada, we see here the thunderbolt in one hand and the lotus in the other hand, and how it's going to be necessary for some thunderbolt training for senior men. This is going to be required for our society as a body to advance, because otherwise the granti, the nut, the tenth offense, when even a senior man or woman can have the tenth offense, there's no doubt about it. Just because you've been chanting for 10 years doesn't mean you've overcome the 10th offense against the holy name. Don't be a fool.
तो महाराज बता रहे हैं कि इस जैसे हम प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि एक आचार्य के एक हाथ में वज्र होता है, दूसरे हाथ में कमल होता है, तो वैष्णव सदाचार के में प्रशिक्षण हमारे जो प्रमुख भक्त हैं उनको वज्र के समान देना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा पूरा का पूरा आंदोलन कृष्ण भावनामृत जो संघ है वो प्रगति कर सके। नहीं तो ये बहुत ही हम नहीं समझ पाएंगे कि कैसे प्रगति होगी।
If you want to actually attain to the lotus feet of the Lord, you have to give up something.
और महाराज बता रहे थे कि अगर हम टेंथ दस सालों तक हम जब करते भी रहे, लेकिन अगर हम दसवां अपराध ना छोड़े जब के प्रति, तो हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे और हम एक मूर्ख ही रह जाएंगे। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमको समझना होगा कि हमें कुछ त्यागना होगा।
But one of the big things you have to give up is attachment. Many senior devotees are attached to Pratistha.
और सबसे बड़ी चीज जो हमें छोड़नी होगी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो है आसक्ति। और हमारे प्रमुख भक्तों में भी प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति दिखती है।
So that's a very big granthi. That's a granthi.
तो ये बहुत बड़ी गांठ है, ग्रंथि है।
How many of you know the meaning granthi?
आप में से कितने बार ग्रंथि का मतलब जानते हैं?
Yes, what is granthi?
Tight
knot located where?
In the heart.
Yes, in the heart.
There you go.
There you are.
So प्रभु जी ने उत्तर दिया कि ग्रंथि का मतलब है हृदय में बहुत टाइट नॉट।
Very beginning of the Shrimad Bhagavatam, very beginning, first canto of Bhagavatam is speaking about this granthi, this sword. Cut this granthi with the sword of knowledge, with the Bhagavat, with the light of Bhagavat, with the light of Shravanam Kirtanam. Cut the granthi. So we cannot cut it. We have to cut the granthi. We cannot just, try to undo it by hand. No, that will not work.
तो महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बताया जा रहा है कि हमें इस हृदय की जो गांठ है उसको काटना होगा श्रवण कीर्तन के माध्यम से, और इसको हम खोल नहीं पाएंगे, इसको काटना ही पड़ेगा।
There is a story about Alexander the Great.
Alexander जो है महान सिकंदर के बारे में एक बहुत बड़ी कथा है।
Emperor from ancient Greece. Greece. Nobody even knows where Greece is anymore, but it used to be, they used to have a world empire, you know.
तो वो ग्रीस के राजा थे और आज के तारीख में ग्रीस कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक समय में ग्रीस पूरे जगत पे अपना शासन करता था।
Now it's a very small, quiet nation, and probably a lot of you probably don't even know where it's located.
और अभी तो बहुत छोटा देश है और आज के समय पता भी नहीं है कि कहाँ पे स्थित है।
There used to be a world power, and Alexander the Great, with his armies, came all the way to India.
और वो इतना शक्तिशाली था एक समय कि जो सिकंदर था वो भारत तक आ गया अपने 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 जो सेना के सेना को साथ।
So he came to one place where there was a legend. There was a giant rope, perhaps it was, half a meter thick, a knot tied, a rope tied in a knot, perhaps a half a meter thick, I mean a giant rope.
तो महाराज बता रहे हैं कि एक जगह जो सिकंदर आए तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही कसी हुई गांठ देखी, एक के ऊपर एक तकरीबन आधे मीटर बड़ी चौड़ी गांठ।
So the legend was that whoever could untie this knot would conquer the world.
और ऐसी भविष्यवाणी थी कि अगर कोई इस गांठ को खोल सकेगा तो वो पूरे जगत का राजा बन जाएगा।
many men must have tried, but it was practically impossible by a simple mechanical means of, you know, trying to pull it in this and that, and it was not possible to undo that knot.
तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन केवल हाथों के माध्यम से उसे खोल पाना असंभव था.
But Alexander the Great took his sword and he was just simply cut that knot. He cut that knot.
और सिकंदर,
he cut it.
सिकंदर ने अपनी तलवार उठाई और उस गांठ को काट दिया.
And he did become the conqueror of what was called the civilized world of those days. Except for India, he didn't get very far in India.
और वास्तव में वो पूरे के पूरे जगत के सम्राट बने. भारत में नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी भारत बने बाकी जगह.
He recognized in India already first-class culture.
उन्होंने भारत में बहुत अच्छी संस्कृति देखी.
He recognizes that India had a superior culture.
उन्होंने देखा कि भारत में बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृति है.
Of course, the Kshatriyas were strong in those days also, so they could oppose.
और उस समय भारत के क्षत्रिय बहुत ही शक्तिशाली थे, तो उन्होंने सिकंदर का विरोध.
So Kartikranti was Shravanam Kirtanam, as given by the Acharyas, given by Prabhupada, given by Guru, given by Vaishnavas. You cut this country, don't get puffed up, don't become impersonalist, don't keep that tent defense. You have to be consciously aware whether you're working on your heart, whether you're working on that tent defense or not.
तो महाराज बता रहे हैं कि हमें भी अपने हृदय की इस ग्रंथि को काटना होगा श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, जो हमें आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, वैष्णवों ने दिया है, और हमें हमेशा ही इसका ध्यान रखना होगा, सचेत रहना होगा कि वास्तव में क्या हम अपने हृदय पे कार्य कर रहे हैं, क्या हम अपने झूठे अहंकार से भूल तो नहीं रहे. तो इस पे हमें हमेशा ध्यान रखना होगा और इस पे कार्य करना होगा.
Can anyone have any question?
तो किन्हीं का कोई प्रश्न है?
Yes, Prabhu.
Thank you very much, Maharaj.
Can't hear.
Thank you very much. It was a very thought-provoking lecture. I just want to know, Maharaj, you just made a last point. We have to be consciously working. We have to be consciously aware whether we are working to get rid
of. We are all doing it. We're all committing the tenth offense. Only a devotee who is more advanced, they are making the tenth offense much less than a beginner, you know.
So how to be working on this? Can you please throw some light? Like daily we have to be aware of this. How to keep a track?
The hint is given by Krishna himself in the Bhagavad Gita, but repeat the question.
तो प्रभुजी का प्रश्न है कि जैसे महाराज ने बताया कि हमको दिन प्रतिदिन इस पे सचेत रहना होगा कि हम दसवें अपराध पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं, हम हृदय की ग्रंथि पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं. तो प्रभुजी का प्रश्न ये है कि हम दिन प्रतिदिन कैसे अपना ट्रैक रिकॉर्ड से कैसे